గోపీ జన బల్లభ గిరివరధారి జయ గోపీ జన బల్లభ గిరివరధారి జయ యశోదనందన బ్రజ జన రంజన యశోదనందన బ్రజ జన రంజన జమునా తీరవనచారి జమున తీరవనచారి జయ రాధ మాధవ జయ బిహారి జయ రాధ మాధవ జయ బిహారి జయ గోపీ చన బల్లభ గిరివరధారి జయ గోపీ చన బల్లభ గిరివరధారి జయ యశోదనందన బ్రజ జన రంజన యశోదనందన బ్రజ జన రంజన యమునా తీరవనచారి యమున తీరవనచారి జయ రాధ మాధవ జయ బిహారి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupad, Jai Prabhupad, Prabhupad. Jai Prabhupad, Jai Srila Prabhupad. Jai Prabhupad, Jai Prabhupad, Prabhupad. Jai Prabhupad, Jai Prabhupad, Prabhupad. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Gurudev. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Gurudev. Jai Prabhupad, Jai Prabhupad, Prabhupad. Srila Prabhupad ki, Ul Premanandi. आज हम सब हर दिन की भांति श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद सेकंड कैंटो से 27वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। एते अनुपथायेत एकादश महाभटाः एतावालन्ना सुब्रु कोयं ते अहि पुरुषरः क एते अनुपथायेत एकादश महाभटाः इतावालल नासुब्रु कोयं ते अहि पुरस्तरः कैते अनुपथायेत एकादश महाभटाः इतावालल नासुब्रु कोयं ते अहि पुरस्तरः कै अनुपथायेत एकादश महाभटाः एतावालन्ना सुब्रु कोयं ते अहि पुरःसरः। कैते अनुपथायेत एकादश महाभटाः एतावालन्ना सुब्रु कोयं ते अहि पुरःसरः। कैते अनुपथायेत एकादश महाभटाः एतावालन्ना सुब्रु कोयं ते अहि पुरःसरः। कैते अनुपथायेत एकादश महाभटाः మిగతా వాళ్ళని అశుభ్రు ఓయం త్రిపురాసుర కైతే అనుపథాయిత ఏకాదశ మహాభటా ఏతావాలన నాశుభ్రు ఏయంతే ఐపురసర కాయతే అనుపథాయిత ఏకాదశ మహాభటాః నాశుభ్రు కోయం తే అహి పురసర కయతే అనుపథాయిత ఏకాదశ మహాభటాః ఏతావాళ్ళ నాశుభ్రు కోయం తే అహి పురసర మాతాజీ कह कौन एते ये सब अनुपथा अनुचर ए जो ते तुम्हारे एकादश ग्यारह महाभटाह अत्यंत सूरवीर अंगवरक्षक एता ये सब वा भी ललना स्त्रियां सुभ्रु ये सुलोचनी कह कौन अयम यह ते तुम्हारा अहि सर्प पुरह सामने सरह चलने वाला अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हे कमल नैनी तुम्हारे साथ ये ग्यारह बलिष्ठ अंगरक्षक और ये दस विशिष्ट सेवक कौन हैं इन दस सेवकों के पीछे पीछे स्त्रियां कौन हैं तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मन के दस बलिष्ठ नौकर हैं पांच कर्मेंद्रिय तथा पांच ज्ञानेंद्रिय ये दसों मन की अधीक्षता में कार्य करती हैं मन समेत ये दसों कुल मिलकर ग्यारह प्रबल अनरक्षक बनते हैं इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों का ललना कहा गया है मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है और ये दसों इंद्रियां मन के अधीन रहती हैं और दस इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति होनी है किंतु ये सब प्राण पर आश्रित हैं जिसे यहां सर्प के रूप में प्रदर्शित किया गया है जब तक प्राण रहता है उस तभी तक मन कार्य करता है और मन के अधीन सारी इंद्रियां रहती हैं और इन इंद्रियों से अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वास्तव में पुरंजन नामक जीव इतने सारे ठाट बाट से अत्यधिक उद्विग्न रहता है यह सारा ठाट बाट अनेक प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की शरण में जाता है और सारा कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है अतः प्रहलाद महाराज क्षणिक भौतिक जीवन की स्वीकार करने वाले व्यक्ति को श्री भगवान की शरण ग्रहण करने और उन्हीं पर सारी चिंताओं को छोड़ देने का उपदेश देते हैं ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपगान्धिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च శ్రీరూపం సాగరజాతం సగన రఘునాథానింతం తం సజీవం సావదైతం సావధూతం పరిజన సైతం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సగన లలితా శ్రీ విశాఖాంతశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी शिरा देवी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नष्टप्राय सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्वदनैष्ठिकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज मुझे श्रीमद् भागवतम पर बोलने का अवसर श्री असीम प्रभु की असीम कृपा से प्राप्त हुआ है। जो कुछ त्रुटि होगी उसे क्षमा कीजिएगा। और इनका भक्तों में उत्साह बढ़ाने का बड़ा एक असीम कृपा है, इसलिए इनका नाम गुरु महाराज ने असीम कृष्ण भी रखा है। जिसको क्षमता नहीं है उसको भी व्यास आसन बैठने की क्षमता देते हैं। इसलिए हम सभी भक्तों को और उनको असीम जी को सादर प्रणाम करते हैं। और सभी गुरु बहनों और माताओं सबको मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूं। और जो कुछ त्रुटि है उसे क्षमा कीजिएगा। इसमें श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक में पुरंजन को संबोधित करते हुए नारद जी कहते हैं, पुरंजन एक्चुअली राजा परहिषित हैं, लेकिन एक राजा की निंदा करने के लिए एक वैष्णव का धर्म नहीं बनता है। नारद एक महान वैष्णव हैं, आचार्य हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, और कृपा करने के लिए राजा परहिषित के पास आए हैं और उन्हें पुरंजन नाम के व्यक्ति की कथा सुनाना चाहते हैं। एक्चुअली पुरंजन जो है हम सभी हैं। हम सबको ये अपने ऊपर लेना चाहिए कि हम सब पुरंजन हैं, और स्त्रियों को अपनी पत्नियों को पुरंजन ही समझना चाहिए। तो ये संबोधित कर रहे हैं राजा को कि एक पुरंजन नाम का राजा था, वो पूरे विश्व में घूम के आया, उसकी आत्म शांति इच्छा पूर्ति के लिए कहीं जगह नहीं मिली। उसके बारे में बता रहे हैं कि पुरंजन जैसा व्यक्ति, इसके पहले वाले श्लोक में बताते हैं कि कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र का प्रथम सूक्ति है कि आथतो ब्रह्म जिज्ञासा, हर व्यक्ति को जिज्ञासा करनी चाहिए। हम सभी पुरंजन हैं, हम सभी को जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम कौन हैं। सर्वप्रथम मुझे जानना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं और मैं किसका पुत्र हूं और फिर मुझे कहां जाना है। अगर इस प्रश्नों का जवाब सब अपने आप में ढूंढ ले रहे हैं तो उनके अंदर भगवान की भक्ति स्वयं प्रवेश कर जाएगी। कहीं दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ढूंढना है कि मैं कौन हूं। मैं तो ये शरीर नहीं हूं, और जब शरीर स्तर पर जब हम आते हैं तो शरीर की सारी सुविधाओं को ढूंढने लगते हैं। फिर इंद्रिय आती है, 10 इंद्रियां हैं, इंद्रियों की तृप्ति के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर हम इंद्रियों को तृप्त करने के लिए पुरंजनी के पास जाते हैं और पुरंजनी से मिलकर के हम बच्चा पैदा करते हैं और उस बच्चे के भरण पोषण में पूरा लाइफ खत्म कर देते हैं। इसमें यह नारद जी बताना चाहते हैं कि ये जो परिवार है यही एक्चुअली आपके लिए डकैत हैं, जिसका आप भरण पोषण कर रहे हैं। तो हम सबको ये अपने आप में ढूंढना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब आत्मा पर आप आ जाएंगे कि शरीर नहीं है आत्मा हूं, तो आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा को तो ये भरण पोषण के लिए खाना पीना ये सब जरूरी नहीं है, कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है, श्रृंगार करना जरूरी नहीं है। आत्मा का खुराक केवल कृष्ण नाम लेना है, कृष्ण भक्ति करना है। तो हमें आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, न कि शरीर की संतुष्टि के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सब इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं और इंद्रिय की तृप्ति कभी होती नहीं है। आजीवन व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगा रहता है लेकिन इंद्रिय को तृप्त नहीं कर पाता है। ये 10 इंद्रियां जो हैं आपके शरीर को चलाने के लिए, दुर्गंध छोड़ने के लिए हैं, आपके विकारों को निकालने के लिए हैं। लेकिन हम सोचते हैं ये 10 इंद्रियां जो हैं इनको खुश करना मेरा कर्तव्य है। जब 10 इंद्रियों के चक्कर में जीव पड़ जाता है फिर इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, उनको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो 10 इंद्रियां हैं और इंद्रियों के साथ हजारों स्त्रियां हैं, और दसों के पीछे स्त्रियां कौन हैं इनको जानना चाहिए, क्योंकि इनकी इच्छाएं जो इंद्रियों को वो स्त्रियों की तुलना की गई। तथा तुम्हारे आगे पीछे चलने वाला ये सर्प कौन है? वो पूछ रहे हैं पुरंजनी से कि ये तुम्हारे जो एकदम आगे आगे चल रहा है सर्प के समान, ये कौन है? आत्मा के बारे में, सर्प आत्मा है, आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं उस पुरंजनी से। राजा पुरंजन ऐसा संबोधित कर रहे हैं नारद जी कि जब उस पर मोहित हो गए पुरंजनी पे, तो पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारे 10 अंगरक्षक कौन हैं और इनके साथ जो स्त्रियां हैं हजारों, ये कौन हैं, और सर्प जैसा आगे आगे चल रहा है ये कौन है? यह हम सबके सामने चल रहा है सर्प। हम सबकी 10 इंद्रियां हैं, मन को पकड़ के 11 हैं। तो हम इनको जब इनकी तुष्टि के लिए लग जाते हैं तो भगवान की भक्ति में बाधा आ जाता है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। इन्हीं इंद्रियों को कंट्रोल करके जब भगवान की सेवा में लगा देते हैं ते इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और भगवान की भक्ति में लग जाती हैं, तो आत्मा को भी शांति मिल जाती है। आत्मा यही चाहती है, और आत्मा से कोई मतलब नहीं कि अच्छा अच्छा व्यंजन आप खिलाएं उनको, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनाएं, अच्छी स्त्री लाएं, अच्छे बच्चा पैदा करें और उसके भरण पोषण में लगें। ये आत्मा से उससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा का खुराक है कृष्ण नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आत्मा को ये खुराक देंगे तब जाके आपका जीवन सफल हो सकता है। तो परहिसित राजा जो है अपने बच्चों को तो भेज दिए कि जाओ तपस्या करो, लेकिन उनका आगे भविष्य कैसा होगा उसके लिए धन उपार्जन करना चाहिए और कैसे कर्मकांड करना चाहिए कि हम इस भौतिक दुनिया में उनको सुखी रख सके, हम सुखी रहें, इसलिए वो पूरा कर्मकांड में लग गए। तो नारद जी बड़े दयालु हैं, जो भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं उनको आगे से जाके सहायता करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को भी उन्होंने सहायता किया, पहले तो समझाया कि आप घर चले जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं भक्ति करने आया हूं, इतनी छोटी उम्र में नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं भक्ति करूंगा। तो बहुत दिनों तक उन्होंने पत्ता खा के जिया, जल पी के जिया, बिना आहार का जिया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने भक्ति जब पूर्ण किया, तो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि क्या चाहिए आपको। कहे प्रभु मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, लेकिन ये तो मोती जवाहरात सब मिल गए, अभी हमें उस कांच के टुकड़े की जरूरत नहीं है, हमें अपने पिता के राज्य की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपकी अखंड भक्ति चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हमें वैष्णव भी कृपा करते हैं और भगवान तो कृपा करते ही हैं। तब ध्रुव महाराज जब गए तब उनको वैष्णव आके सामने से मिले और उन पर कृपा किए और उन्होंने मंत्र का जाप बताया। जब हम जिज्ञासा ही नहीं करेंगे, हम भक्त के पास जाएंगे नहीं, वैष्णव का संग नहीं करेंगे, तो हम पुरंजन ही बन जाएंगे, हम अपने इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बार बार बोलते हैं कि माया इज वेरी पावरफुल। क्यों बताते हैं? क्योंकि उनको पूरे भागवतम का ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है, सारा निचोड़ है, इसलिए वो कहते हैं कि माया इज वेरी पावरफुल। माया से हमेशा बचते रहिए, चैलेंज मत करिए माया को। जब माया से आप टकराने की कोशिश करेंगे, माया भी स्वभावतः आपसे टकराएगी। इससे उससे प्रणाम करके माया देवी मुझे भगवान की भक्ति में लगाइए। ये भगवान की ही शक्ति है, इसका तिरस्कार करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। माया से बार बार डरने के लिए प्रभुपाद जी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कितना भी भक्ति करते हैं, जो अन्न जल वस्त्र ग्रहण करते हैं उससे रजोगुण तमोगुण सतोगुण की उत्पत्ति होती है। जब रजोगुण ज्यादा होता है तो काम की उत्पत्ति होती है, काम की उत्पत्ति जब होती है तब आदमी काम को शांत करने की खोज में लग जाता है। इसलिए हमारा आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब पर निग्रह करना बहुत जरूरी है। यह तो सभी जीव करते हैं, सभी जीव को उपलब्ध है, चाहे वो चींटी हो, चाहे बड़ा जीव हो, हाथी है, बैल है, कुत्ता है, चांडाल है, सब लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन करते हैं। अगर हम भी यही करने में लग गए तो हमारा मनुष्य जीवन में और कुत्ता बिल्ली के जीवन में क्या फर्क है? वो भी करता है, हम भी यही करते हैं। और वाकई ये कलयुग में सब लोग यही कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। नींद, नारी, भोजन ये तजई, लक्ष्मण जी ने नींद, नारी और भोजन का त्याग किया तब भगवान की भक्ति कर पाए। लक्ष्मण जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे तो भगवान की भक्ति कर सके। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्मचर्य जीवन का निर्वाह करना। ब्रह्मचारी जीवन बहुत आसान जीवन नहीं है कि ऐसा खाना सोना के लिए आया है, ब्रह्मचारी जीवन में स्ट्रगल करना है। आप ब्रह्मचारी जीवन में ही भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मचारी से जब गृहस्थ में जाता है तो भरण पोषण के अंदर लग जाता है आदमी। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन जो मिला है आपको, ये बड़े भाग्य की बात है, इसे सुचारू रूप से चलाना चाहिए। ब्रह्मचारी को साधना में पक्का होना चाहिए, साधना से जरा भी वो अगर कतरा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, निश्चय होए कि वो गिर जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाया है, मंगल आरती जरूर आना है, क्लास जरूर सुनना है, गुरु पूजा में जरूर आना है, 16 राउंड कम से कम जप जरूर करना है, और भगवान की जो सेवा दी जाती है वो जरूर करना है। अगर इसमें आप सतत प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित है आप प्रगति करेंगे इस प्रभुपाद जी के मूवमेंट में। अगर इससे थोड़ा भी कतरा रहे हैं तो पतन निश्चित है। तो हमें बहुत ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मचारी जीवन को कैसे माया से दूर रखना चाहिए। माया कहीं नरक से नहीं आई हुई है, माया भी आपकी संगिनी है, भगवान की बनाई हुई है, घृणा करने की चीज नहीं है। लेकिन माया में लिप्त होना यह भक्ति मार्ग के लिए ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी माताजी शब्द क्यों यूज करते हैं? एक छोटी बच्ची को भी माताजी बोलते थे, हम लोग भी अनुसरण कर रहे हैं कि माताजी बोलते हैं। माता में कोई विकार नहीं होता है। मां सदृश किसी को समझना, मात्रेषु परदारेषु, चाणक्य बोलते हैं हर माता को अपनी माता के समान समझना, यही भक्ति है। हमको हर माताओं को मां की दृष्टि से देखेंगे तो हम माया से बच जाएंगे। जब हम माया को अपने अनुकूल देखना चाहते, जैसे चिड़िया और पक्षी या कोई भी हो, आप देखते हैं कि एक चिड़िया भी प्यार करती है तो पता चल जाता है, जैसे कबूतर है या कोई और पक्षी है, बंदर है, कोई भी प्यार करता है तो हम सबके समझ में आता है कि यह प्यार कर रहा है। लेकिन मनुष्य को ऐसा प्यार नहीं करना चाहिए, मनुष्य को पक्षी से सीखना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि अगर सेक्स लाइफ करना है तो कौवे से सीखना चाहिए। कोई व्यक्ति बता सकता है कौवा कभी प्यार करता है अपने पत्नी से? क्या वो बच्चे नहीं पैदा होते उनको? लेकिन वो कितनी शर्म करता है, कितनी शर्म से रहता है कौवा। लेकिन हम कौवे के सबसे ज्यादा अनादर करते हैं, क्या तुम कौवा हो ऐसा बोलते हैं, और कौवा गंदी जगह पे बैठता है। लेकिन एक चीज में वो पावरफुल है, किसी के सामने वो प्यार नहीं करता है या लस्टीपना नहीं दिखाता है। हम कौवे से भी खराब हैं। रोड पर चलते हुए देखते हैं माताओं को पकड़ के पिताजी लोग चलते हैं, तो कौवा तो उनसे अच्छा है, कम से कम वो आड़ में रहता होगा। और ब्रह्मचारी को भी पक्षी से सीखना चाहिए। मुर्गा जो है 4 बजे बोलता है, उसको सिखाया नहीं जाता 4 बजे ही बोलना, तो ब्रह्मचारी को भी कम से कम 4 बजे जरूर उठना चाहिए। हर साधु को उठना चाहिए, ब्रह्मचारी को ही नहीं। ब्रह्मचारी को ज्यादा सम्मान इसलिए दिया जाता है कि वो अपने इंद्रियों पर काबू होने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो कौवे से तो हमें यह लाइफ, सेक्स लाइफ सीखना चाहिए, और क्या बोला मैंने, मुर्गा से सीखना चाहिए 4 बजे उठना चाहिए। वो बेचारा कितना भी नींद में हो, थका हो, मादा हो, लेकिन वो 4 बजे उठ करके सबको जगाता है। तो आप सबको भी 4 बजे जरूर उठना चाहिए और भगवान की भक्ति में आने की कोशिश करना चाहिए। जब हम पुरंजन बनना चाहते हैं तो हम अपने इंद्रिय तृप्ति के उपकरण में लग जाएंगे, क्या कैसे क्या पैदा करूं, कैसे क्या पैदा करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, तब हम एक पुरंजनी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब पुरंजनी पा जाते हैं तो उसको पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और उसको लक्ष्मी से उपमा देते हैं, आप तो साक्षात लक्ष्मी हो, आप तो ये हो, आप तो हो। जब वो मिल जाती है तब उसको भोग लेते हैं तो उसका तिरस्कार करने लगते हैं, तब वो लक्ष्मी नहीं रह गई, तब भूतनी हो गई। आप इस प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं, आप लोग देख रहे हैं। बहुत से सारे यहां पर आते हैं, भक्तों से पूछते हैं कि हमारा स्त्री से नहीं बनता है, तो हम पूछते हैं कि भैया इसके पहले बनता था जब आप नहीं मिले थे उससे, शुरू शुरू में मिले? नहीं नहीं, तब तो बहुत प्यार करती थी। और हम कहे आप नहीं करते थे? बोला मैं भी करता था। तो मैं बोला आप किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाइए, उससे इलाज करिए, आपके दिमाग में कोई कमी आ गई है या उसके दिमाग में कमी आ गई है। तो जब इंसान फंसता है, माया के आवेश में आता है, तो माया की बड़ी प्रशंसा करता है और उससे मिलने के लिए लाख प्रयत्न करता है, उसके परिवार की चोरी से या कहीं जंगल में जाके या चाहे जैसे कि जहां मुझे कोई देख ना सके ऐसे स्थान पर बुलाता है, वहां जाता है। उतना भगवान के लिए व्याकुल नहीं हो सकता है। अगर शायद उतना ही भगवान के लिए व्याकुल हो तो उसे भगवान मिलने में कोई देर नहीं। कलयुग में बहुत जल्दी मिल जाते हैं भगवान। सतयुग से 10,000 साल तक लोग तपस्या करते थे तब भगवान मिलते थे, लेकिन कलयुग में हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। केवल हरि नाम लेने से, जप करने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन हम उस पर भी तत्पर नहीं होते हैं। आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है। लोग कहने के लिए तो कह देते हैं कि मैं तो भगवान का ही अंश हूं, भगवान तो मैं स्वयं भगवान हूं। हम भगवान के अंश जरूर हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन समुद्र जैसे है, समुद्र का एक बूंद पानी अगर आप टेस्ट करेंगे तो समुद्र जैसा लगेगा, तीखा लगेगा, थोड़ा कड़वा लगेगा या नमकीन लगेगा, तो आप चेक करके बता सकते हैं कि ये पानी समुद्र का है, यह मीठा पानी नहीं है। वही हमारा एक बूंद जो है, जैसे समुद्र था है, उसी प्रकार से भगवान का जो आत्मा और परमात्मा का समुद्र है, संबंध है, समुद्र की एक बूंद पानी की जैसा है। गुण तो सभी विद्यमान है उसमें, लेकिन समुद्र नहीं है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं है। ये अंतर हमेशा समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन होती है और उसका माध्यम केवल भक्ति है। भक्ति माध्यम से हम परमात्मा में लीन हो सकते हैं, परमात्मा में मिल जा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। अब भगवान भागवत गीता में बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि आशुचः। भगवान कहते हैं सभी धर्मों को छोड़ दो, तमाम धर्मों से इंसान बंधा हुआ है। किसी से पूछिए कि आप भगवान की भक्ति में आ जाइए ना, नहीं हमारे पास बहुत बंधन है, भगवान ने यह सब जिम्मेदारी दिया है। अरे भगवान ने कब आपको गले में फांस करके भेज दिया था पेट में? अपने स्वेच्छा से आप बंधे हैं बंधन में, और उससे निकलने के लिए प्रभुपाद जी आइडिया बता दिए कि भैया भव बंधन से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, इसलिए आप लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का जप करिए और भगवान के धाम में चले जाएंगे। चिंता की बात यह है कि हमें विश्वास नहीं है नाम में। कर्मी लोगों को अगर कहिए कि बस भगवान का नाम हमेशा लेते रहिए, अरे कहीं आप हमको पागल बना रहे हैं कि हमको काम धंधा और नहीं है, हम 5-10 मिनट सवेरे ले लेते हैं, लेकिन शास्त्र का नित्यम भागवत सेवया, नित्य हमेशा भगवान की सेवा में रहना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। सर गोस्वामी लोग अगर 1 मिनट जप भी ले लेते थे चप्पल से मारते थे अपने सर पे, अरे निद्रा माया ने मुझे 1 सेकंड के लिए भगवान से दूर कर दिया। हम लोग रात भर सोते हैं, 4 बजे उठने के लिए फिर भी सोचते हैं चलूं कि नहीं चलूं, आज मंगल आरती, तो हम तो चप्पल से नहीं मारते हैं। सर गोस्वामी से हमें सीख लेना चाहिए, कि एक सेकंड के लिए भी अगर आंख झपती थी और चप्पल से मारते थे अपने सर पे। हम सब रात भर सोते हैं तो भी चार बजे उठने में आलस करते हैं, कितनी दुर्भाग्य की बात है। प्रभुपाद जी ने अपनी शरण दे दी है, हम प्रभुपाद जी की शरण में आकर के भगवान के पास जा सकते हैं, ऐसा दावा है। प्रभुपाद जी गारंटी करते हैं, भागवत गीता में भी भगवान कहते हैं मेरे शरण में आए हुए भक्त को अपने धाम में मैं ले लेता हूं। तो हमें संदेह किस बात की होनी चाहिए? हम तो स्वयं अपने आप पुरंजन बन रहे हैं, हम खुद इंद्रियों के गुलाम बन रहे हैं। इंद्रियों को गुलाम बनने से कभी भक्ति से बहुत अंतर है। अगर गुलाम बनना है तो भगवान का, गुरु महाराज का बनना है। इंद्रियों का गुलाम बनने से ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। भगवान की तपस्या करना आसान भी है और कठिन भी है। जब आप सभी प्रकार के वैभव से मुक्त हो जाएंगे, सभी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे, तब जाके आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उपाधि भी बहुत खतरनाक चीज है, पद जिसको कहते हैं, जिसके पीछे उपाधि लग जाती है उसको छोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। अच्छी भक्ति करने के लिए उपाधि के पीछे नहीं भागना चाहिए, उपाधि आपके पीछे आना चाहिए। हमारे बीच में बैकुंठ मूर्ति प्रभु बैठे हैं, एक बार हमने कहा आप अकाउंट का काम क्यों नहीं संभालते हैं, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं करना। तो हमें अगर प्योर भक्ति करना है तो उपाधि का चक्कर छोड़ करके ही कर सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि प्रभुपाद जी का कृपा प्राप्त करके, प्रभुपाद जी गृहस्थ लाइफ देख करके और उन्होंने कैसे उसको बिस्टा के समान छोड़ दिया, हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी हम लोगों पर कितना ऋण चढ़ा के गए हैं, उस ऋण को हम कैसे उतारेंगे। हम भगवान की अच्छी भक्ति करके प्रभुपाद जी के चरणों में अर्पित करके उनके ऋण को चुका सकते हैं, और कोई विकल्प नहीं है। अगर हम अच्छी भक्ति करना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी का अनुसरण जरूर करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी फिर से गृहस्थ लाइफ की तरफ देखा नहीं उन्होंने। उनसे कोई पूछता था आपके बच्चे कहाँ हैं, बोले हमारे थे तमाम बच्चे हैं। उन बच्चों की गणना नहीं करते थे जो बच्चे थे, आप सबको हम सबको ही बच्चे कहते थे, अनगिनत बच्चे हैं। जब साधु हो जाता है व्यक्ति ना, तो उसको सारा विश्व अपना लगता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रभुपाद जी मिले थे, उन्होंने कहा भागवत गीता का प्रचार करिए ना, सारा विश्व आपका हो जाएगा, आप एक बांग्लादेश के चक्कर में क्यों पड़े हैं। तो पूरा विश्व को अपना बना लिया प्रभुपाद जी ने, कोई भी ऐसा साधु विश्व में हुआ नहीं और होगा भी नहीं। आज इस्कॉन में सारे देश के भक्त हैं, पूरे विश्व के भक्त हैं, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो प्रभुपाद जी ने निर्माण किया है। तो इसके पीछे केवल त्याग है और निष्ठा, प्रभुपाद जी की निष्ठा और त्याग के कारण ये मूवमेंट दिन रात बढ़ रहा है, जिसमें हम बड़े खुशी से जी रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सो हम चाहेंगे कि प्रभुपाद जी की कृपा पात्र बनना चाहिए, आप सबको बनना चाहिए, रात दिन प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी, प्रभुपाद जी कैसे खुश होंगे, कितनी शुद्ध सेवा हम कर सकें प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी हर व्यक्ति को देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, यह मत सोचिए कि वो अदृश्य हो कि हम लोग कर रहे हैं, गलतियां जो कर रहे हैं सब प्रभुपाद जी देख रहे हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज हिंदुजा हॉस्पिटल में थे, मैं उनको देखने के लिए गया, हमारा महाराज आपको बड़ा कष्ट हुआ इसलिए मैं बहुत दुखी हूं ऐसा। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये शिष्यों की गलती से गुरु को भुगतना पड़ता है, हमारे शिष्य कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। जो भगवान को समर्पण गुरु है जैसे गोपाल कृष्ण महाराज हैं और अपने गुरु महाराज को प्रभुपाद जी ने समर्पण किया था, तो प्रभुपाद जी हमेशा सोचते थे कि हमारे गुरु महाराज कैसे खुश होंगे। उनके गुरु महाराज ने कहा था कि पाश्चात्य जगत में आप प्रचार करिए, आप इंग्लिश जानते हैं तो आप पाश्चात्य जगत जाइए। पाश्चात्य जगत में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, ज्ञान था, ज्ञान का भंडार था, तो उनको गुरु महाराज ने कहा कि तुम इंडिया में रहोगे तो इंडिया के लोगों को थोड़ा बहुत कल्चर पता है, धर्म अधर्म को जानते हैं, पाश्चात्य जगत में लोग जानवर की जिंदगी जी रहे हैं, वहां जाओगे तो वहां से प्रचार शुरू करोगे तो अच्छा रहेगा। और बुक छापने के लिए कहा था उन्होंने, तो न बुक छापने के लिए पैसा था प्रभुपाद जी के पास, ना पाश्चात्य जगत में जाने के लिए था। आज तो हमारे पास इतने पैसे हैं उनकी कृपा से, उनके त्याग से हम सब प्लेन में जाते हैं, और महाराज तो इसमें गए थे पानी के जहाज में गए थे और बहुत रिक्वेस्ट किए थे महाराज जी से, यहाँ बाग सामने बंगला है। तो प्रभुपाद जी ने जो त्याग किया है, जो तपस्या किया है, जो उन्होंने इस्कॉन के लिए किया है, इस्कॉन को बनाया है, प्रभुपाद जी का ये इस्कॉन बॉडी है, पूरा इस्कॉन IESKCON जो प्रभुपाद जी की बॉडी है, इससे कभी हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इस बॉडी को भंग करने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है कि इसमें जो आया हुआ पैसा है, धन है, लक्ष्मी है, वो हमारा ब्लड है। तो प्रभुपाद जी के इस्कॉन में जो धन आया है उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसे हमें मुकुंद माधव प्रभु से सीखना चाहिए। तो हमें बड़ा अच्छा सीख मिलती है, जैसे मुकुंद माधव प्रभु हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन हम उनको सम्मान करते हैं, इसलिए कि प्रभुपाद जी के एक एक पैसे का महत्व करते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो उनके विचार में नहीं आता तो साइन भी नहीं करते हैं, उनका कॉन्शियस अगर कहता है कि सही है साइन करना चाहिए चेक पे तो कर देते हैं, अन्यथा नहीं करते। तो हम सबको उनसे ये सीखना चाहिए, हम चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे गृहस्थ हैं, चाहे जो कुछ, ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचारी ही भगवान का अच्छा भक्त होता है। गृहस्थ प्रभुपाद जी थे, इतने बढ़िया भक्ति करके भगवान के धाम चले गए, आज हम सब उनके शरण में भगवान की भक्ति सुचारू रूप से कर रहे हैं, निडर होके कर रहे हैं, हमें बड़ा साहस रहता है, हम चाहे जहां जाते हैं इस धोती कुर्ता में और प्रभुपाद जी का ये पोशाक जो है हमें बड़ा गर्वित करता है, और जहां जाते हैं हम लोग बड़ा सम्मान मिलता है। शुरू शुरू में हम बैंक कर्मचारी था लेकिन मैं सोचता था कि गुरु महाराज कह रहे हैं धोती कुर्ता पहन के जाने के लिए तो लोग हंसेंगे तो नहीं, लेकिन बैंक में जब पहले दिन गया तो लोग बड़ा अचंभित रूप से देखने लगे, और तिलक उलक करके गया तो लोग बोलते हैं आज क्या क्या बात क्या है। एक बड़ा वृद्ध आदमी आया, सिंधी व्यक्ति था वो, बहुत पुराना कस्टमर था मेरा, मेरे को बोलता बहुत बड़ा तिलक लगा लिया आपने। हमने कहा कि प्रभु जी आपको भी लगाना चाहिए, समय हो गया है। तो हम लोगों का ये जो ड्रेस प्रभुपाद जी ने दिया है बड़ा सराहनीय है, सम्माननीय है, इसको कभी नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि ये धोती कुर्ता जो है ये हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को प्रभुपाद जी ने ऊपर लाया है। बड़ी गर्व की बात है, है कि इसको हम सबको बड़ा गर्व होना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमारी संस्कृति को ऊपर लाया है, और जो भ्रष्ट हो रहे हैं लोग, जो लोग कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है, आप रोड पर देखते हैं आधे नंगे चल रहे हैं, पूरा नंगे चल रहे हैं, लेकिन जो प्रभुपाद जी के मूवमेंट में माता है चाहे पिता है कोई भी है, अपना अंग ढक के चल रहा है और बाकी सब भ्रष्ट होकर के नंगे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका वृक्ष का जन्म होगा, वृक्ष को कोई कपड़ा नहीं पहनाया जाता है, सैकड़ों सैकड़ों साल पड़ा रहता है ऐसा बिना कपड़े का, तो उन लोगों को वृक्ष बनना है जो अंग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि प्रभुपाद जी के मूवमेंट में रह करके प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करें तो समय नष्ट कर रहे हैं, यहां पे समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा है कि मुझे कुछ बनाना चाहिए, मुझे फेमस होना चाहिए, मैं धनवान होना चाहिए, तो यहां से निकल के बाहर जाके अपना कुछ अपने कार्यक्रम में लग जाना चाहिए जिससे धन उपार्जन कर सके, और धन उपार्जन करने के बाद उसका बुरा ही परिणाम होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धनी, किसी को भी देख लीजिए, जो भी चीज प्राप्त करता है भौतिक चीज, वो उसके लिए दुख का कारण होता है। जैसे बड़ा परिश्रम करके कोई आदमी कार खरीद लेता है, कार खरीद लेता है तो उस कार के लिए एक ड्राइवर लेना पड़ेगा, ड्राइवर के लिए फिर उसका वेतन देना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, जब रोड पे चलेगा तो उसे एक्सीडेंट से भी बचना पड़ेगा, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका जान जैसे निकल गया, फिर उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो सारे जो खर्चे आते हैं उसके दुख का कारण बनता है, और यही जो हमारे जीवन का प्रलोभन है वही हमें भक्ति में नहीं आने देता है। ये उपकरण जुटाने में पूरा जिंदगी हम लगा देते हैं और उपकरण से आत्म शांति मिलती नहीं है जो मिलना चाहिए। ये थोड़ा प्राप्त कर लूंगा तो अच्छा हो जाएगा, वो थोड़ा प्राप्त कर लूंगा। कभी भी देखिए किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आप जिसकी सेवा कर रहे हैं करके देख लीजिए, ना वो खुश होगा ना आप खुश होंगे। आप परिवार की सेवा कर रहे हैं, करो, देखो, अच्छी तरह से करके देख लो। बेटा बड़ा हो गया और बाप जब बुढ़ा हो गया तो जब कुछ बोल रहा है उसको अच्छी बात, क्या पकपक करते हैं, चुप रहो ना, उठ तो पाते नहीं, दुनिया भर की बातें बोलते हो। कर लिया सेवा ना, भाग पा गए उसका सब ब्याज वगैरह। तो जो भौतिक सेवाएं हम कर रहे हैं किसी की भी, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अपनी सेवा को बदलना है कृष्ण सेवा में। जब आप कृष्ण की सेवा करेंगे तब आपके ऊपर कोई ऋण नहीं रह जाएगा, कोई आपका अनादर करने वाला नहीं, सब आदर करते हैं। हम साधु लोग तो जहां जाते हैं सब लोग बड़े आदर से आई है, ये बैठाते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं, बहुत सुंदर से बात करते हैं। लेकिन हम अपने घर में जाते हैं तो सब उपेक्षा रखते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो सुखी जीवन जो है साधु जीवन है, इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, संतुष्ट है व्यक्ति। अगर संतुष्ट होना है तो भक्ति करिए, अगर असंतुष्ट होना है तो माया के गोद में चले जाइए, आप अथक परिश्रम करिए, आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा। हमारे भक्त जब नाचते हैं तो देखिए कितना चिन्मय आनंद में रहते हैं, और उनको लगता नहीं है कि वो धनी नहीं है, धनी लोग उनको प्रणाम करते हैं आगे, प्रभु जी हरे कृष्णा ऐसा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैं गरीब हूं, मैं जो है माया की सेवा कर रहा हूं, ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनके अंदर भगवान है, अगर वो अहंकारी हैं तो भी उनके अंदर तो भगवान है ना, वो कहते हैं कि तुम झुको इनके सामने, ये गर्व के छोड़ दो। बड़े बड़े धनियों के पास जब जाते हैं जैसे देवकी नंदन प्रभु वगैरह वगैरह जाते हैं तो उन अपने बल से उनको नहीं मोड़ लेते हैं, भगवान के बल से उन मुड़ जाते हैं बड़े बड़े धनी लोग, क्योंकि उनके अंदर भी भगवान है और आपके अंदर भी भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि झुको, यहां पे हमारा प्रतिनिधि आया है, प्रणाम करो इसको और धन भी दो इसको, हमारी सेवा में लगाएगा। उसको प्रेरित करके नहीं चाहने पर भी चेक काट के दे देता है। मुकुंद माधव प्रभु सबसे रिक्वेस्ट थोड़ी करने जाते हैं, सबके घरों में लेटर भेज देते हैं। कोई कोई नहीं आ पाता है तो हमें बैंक में पकड़ा देता था कि ये भीष्मा में दे दीजिएगा, क्योंकि भगवान उसको प्रेरित करते हैं कि साल में एक बार तो कृष्ण को देना चाहिए कुछ। तो आप सब बहुत महान कार्य कर रहे हैं। भौतिक दुनिया की कोई संपदा नहीं है जो आपकी बराबरी कर सके, इसलिए अपने आप को कभी निर्धन नहीं समझना चाहिए। हम सबसे बड़े धनी हैं, क्योंकि हम भगवान के दास हैं और जिसका सभी लोग दास हैं, कुबेर भी उनके दास हैं, लक्ष्मी भी उनकी दासियां हैं। हम किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति का दास नहीं हूं। कृष्णदास, बिंदास और मायादास उदास। तो मायादास जो रहते हैं उदास रहते हैं, कृष्णदास हमेशा बिंदास रहता है, चाहे जहां रहे, वन में रहे, कहीं पर भी रहे, हमेशा खुश रहता है। इसलिए कृष्णदास बनना बहुत जरूरी है। समय हो गया होगा प्रभु जी, तो आप लोग का समय नहीं लूंगा और जो कुछ गलती हुई हो बोलने में क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा पहला दिन है आज श्रीमद् भागवतम पर बोलने का। असीम प्रभु ने कृपा करके कहा कि आज जरूर आप प्रवचन करिए। प्रश्न पूछने के लिए तो मैं इतना सक्षम नहीं हूं, लेकिन अगर कुछ पूछना चाहते हैं कोई तो हमारी बुद्धि के अनुसार ही पूछे जो मैंने बोला है। यस सर,
हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग सब पुरंजन हैं, हम पुरंजनी से विवाह करना चाहते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, कुटुंब बनने में लगता है और कुछ समय के बाद ऐसा लगता है ये चीज सभी कुछ काम का नहीं है, बेकार है। लेकिन ये ज्ञान पहले क्यों नहीं प्राप्त होता है, वो बाद में क्यों प्राप्त होता है? नहीं नहीं